स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति స్వపరాంతికం వందేహం శ్రీగరు శ్రీయుతపద్కమలం శ్రీగరు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహన రఘునాథాన్వితం ప్రంతజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి నమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభైరవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత పదార్థ శివాది గౌర భక్తవింద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి రామిణి నమస్తే సరస్వతే గౌరవాణీ ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది ఆశ్చర్యదేశారి
హరే కృష్ణ. तो आप सबका आज सुबह के भागवत कक्षा में स्वागत है. श्लोक 10 से पहले श्लोक 9 पढ़ देंगे जिसका तात्पर्य नहीं है. आप्ययाति असौ लोकम वदनामृत मूर्तिना सानुरागावलोकेना विशिदस्मित चारुणा. इसका अनुवाद है, यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है सबों के शांत जीवन में वृद्धि करेगा. और आज का श्लोक है, अव्यक्त वतमेश निगुण कार्य. अव्यक्त यानी कि जिसके अप्रकट कार्य रहेंगे और निगुण कार्य गुप्त रहेंगे और नीतियों को समझ नहीं पाएगा. गंभीर वेदा उपगुप्त वित्ता और के संपन्न करने की विधि कैसे वो कार्यों को सफल कर रहा है ये बड़ी गुप्त रहेगी. और अपगुप्त वित्ता और उसके पास जो धन है वो भी गुप्त रहेगा. और उसके कार्य सफल क्यों होंगे, अनंत महात्म्य गुणैक धामा, क्योंकि वह अनंत महिमा के गुणों का भंडार रहेगा. पृथु प्रचेता एवं समृत आत्मा, और ऐसे जो पृथु हैं जिनका पद स्थायी है और वो छिपे रहेंगे. कैसे छिपे रहेंगे, जिस प्रकार समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं. तो यहाँ वंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति हो रही है और इसमें वो कह रहे हैं कि राजा पृथु के कार्य बड़े गुप्त रहेंगे, उनके पास वो अनंत गुणों के भंडार हैं और वो कैसे कार्यों को सफल कर पाएंगे ये भी गुप्त रहेगा. राजा पृथु भगवान के शक्त्याविशेष अवतार है. महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते कहते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार होते हैं. जिस तरह से समुद्र में लहरों को हम नहीं गिन सकते उसी तरह से भगवान के असंख्य अवतार होते हैं. मुख्यतः 6 तरह की श्रेणियां हैं अवतारों के, और उसमें से एक है शक्ति अवशेष अवतार. तो राजा पृथु कौन से अवतार है, शक्ति अवशेष. तो शक्ति अवशेष अवतार है तो वो नर के रूप में एक राजा के रूप में यहाँ आ रहे हैं. तो दिखने में एक साधारण राजा लग रहे हैं लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान के अवतार है और उनके अंदर अनंत गुणों का भंडार है. क्योंकि वो दिखने में साधारण एक नर के भांति लग रहे हैं तो जिस ढंग से वो कार्य करेंगे बड़े अद्भुत लगेंगे. जिस तरह से बताया जा रहा है श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि समुद्र के जल के भीतर तरह तरह के जीव होते हैं लेकिन समुद्र ऊपर से निर्जीव लगता है, इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर तरह तरह के जीव है. उसी ढंग से राजा पृथ्वी के अंदर अनंत गुण है लेकिन दिखने से बाहर से एक साधारण मनुष्य लग रहे हैं और इन्हीं अनंत गुणों के कारण वो अद्भुत अद्भुत सफल कार्य करेंगे. कैसे सफल कार्य करेंगे, कृष्ण ही अध्याय में पढ़ा कि राजा वेण पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई. उनके पिता राजा वेण बहुत ही क्रूर और एक नास्तिक राजा थे.
उन्होंने अपने राज्य में सारे यज्ञों को बंद करा दिया, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया। क्योंकि उन्होंने यज्ञों को बंद करा दिया तो प्रकृति भी उनके राज्य में उनका सहयोग नहीं दे रही थी। सारी नदियां सूख गई, अनाज की उत्पत्ति बंद हो गई और सब के सब लोग दुखी हो गए। और फिर राजा वेद के बाजुओं के मंथन से, मृतक शरीर के बाजुओं के मंथन से राजा पृथु की उत्पत्ति हुई। और राजा पृथु ने अपने राज्य में यज्ञ की पुनर्स्थापना की। यज्ञों की पुनर्स्थापना करने के बाद भी हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे, फिर भी पृथ्वी से अनाज की उत्पत्ति नहीं हुई। तो राजा पृथु को क्रोध आया और वह धनुष लेकर पृथ्वी पर आक्रमण करने लगे। तब पृथ्वी ने एक गाय का रूप लिया, गाय आगे आगे है, राजा पृथु पीछे भाग रहे हैं। तब गाय पृथ्वी के रूप में गाय प्रार्थना करती राजा पृथु से कि ये कैसी विडंबना है, आप तो स्वयं अवतार हैं, आपका उद्देश्य है धर्म के नियमों की स्थापना करना और आप एक गाय का वध करने जा रहे हैं जो कि धर्म के नियमों के विरुद्ध है, और फिर मैं एक स्त्री हूं, असहाय हूं, आप कैसे मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं। और फिर आप जो थे धरहरी, जिन्होंने वराह के रूप में मेरी रक्षा की थी, और अब आप ही मुझे मार रहे हैं, ये कैसा विरोधाभास है। पहले आप मेरी रक्षा कर रहे हो और आप मुझे मार रहे हो। एक राजा पिथु ने क्या कहा कि धर्म के नियमों की रक्षा करने के लिए मैं एक राजा हूं और प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है, इसके लिए मुझे तुम्हारा वध भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं। तो फिर पृथ्वी को उनके रक्षा संरक्षण में आना पड़ा और फिर बाद में राजा पिथु पृथ्वी रूपी गाय का दोहन करते हैं, उससे बहुत से अनाज और खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो ये राजा पिथु का अद्भुत कार्य है। फिर पढ़ेंगे राजा पिथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। जब 100 अश्वमेघ चल रहा था तो इंद्र ने ईर्ष्यावश उस यज्ञ में कई विघ्न डाले, बार बार घोड़े को चुरा लेते थे। और उसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पे राजा पिथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी 100 अश्वमेघ यज्ञ छोड़ दिए। बहुत अद्भुत कार्य। 12 स्कंदों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना व्याख्या है उसके बाद केवल पृथ्वी महाराज के बारे में इतनी ज्यादा व्याख्या है, और किसी अवतार के बारे में इतना विस्तार में नहीं बताया गया। लगभग 9 अध्याय हैं जो पृथ्वी महाराज की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जाता है कि राजा पृथ्वी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, शक्तिया विशेष अवतार है, लेकिन साधारण आंखों से हम इनकी गतिविधियों को नहीं समझ सकते। जिस तरह से समुद्र ऊपर से दिखने में निर्जीव लग रहा है उसी ढंग से भगवान के कार्य बड़े अद्भुत होते हैं। तभी भगवान गीता के 4 अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान के दिव्य कर्मों को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान के हर अवतार का एक ही अभिप्राय होता है कि धर्म के नियमों की स्थापना की जाए। जिस तरह से नारद मुनि भी भगवान के शिक्षा विशेष अवतार है, जब नारद मुनि देखिए कैसे कैसे कार्य करते हैं। जब राजा जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वां पुत्र 8वां बच्चा आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वसुदेव ने कंस को समझाया कि मैं अपने हर संतान को तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और जब पहली संतान हुई तो वसुदेव पहली संतान को लेकर कंस के पास गए। कंस का हृदय पिघल गया। कंस एक असुर था, उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा अरे 8वीं संतान में मृत्यु का कारण बनेगी तो पहली संतान को क्यों मारना, तो उसने छोड़ दिया। कंस ने राक्षस होते हुए कितना अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, लेकिन ये किसको पसंद नहीं आया, नारद मुनि जी को। नारद मुनि जी ये क्या हो गया, इस राक्षस के हृदय में दया आ गई कि फिर भगवान कैसे आएंगे। तो नारद मुनि तुरंत जाते हैं कंस के पास और उसको भड़काते हैं, क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं हो तुम्हारे सारे के सारे जो दुश्मन हैं देवता लोग आ गए हैं यदुवंश में, ये वृंदावन के नंद महाराज सब के सब यदुवंशी हैं, और पिछले जन्म में काल निमित्त थे तुम और विष्णु ने तुम्हारा वध किया, अब देवता आ गया तो विष्णु भी आने वाले होंगे, ऐसे क्यों छोड़ दिया तुमने। कंस का माथा ठनका, बात तो ठीक है। तो तुरंत उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाला और उसने सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। उसने सोचा कोई भी बच्चा मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है। देखिए नारद मुनि जी भगवान है और अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, वो बेचारा असुर, उसके हृदय में दया आई, दया ले ले, दया मत करो, मार दो इसको। दिखने में कार्य बिल्कुल उल्टा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या अभिप्राय है कि धर्म के नियमों की स्थापना हो, कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी से जल्दी आए। उसके बाद कंस ने कई असुर भेजे और कृष्ण का वध करते रहे। जब अरिष्टासुर का वध किया तो नारद ने सोचा बहुत देर हो गई, अब काफी हो गया, फिर से गए वो कंस के पास। तो बताने चले गए जो इतनी मेहनत की थी वसुदेव ने एक एक रहस्य रखने में कि कृष्ण मेरी संतान है, वो नंद महाराज के पास उनको ले गए थे, सारा का सारा भाड़ना फोड़ दिया। बोला ये कृष्ण बलराम है, ये नंद महाराज के बेटे नहीं है, ये वसुदेव के बेटे हैं, वसुदेव ने तुमसे धोखा दिया है। तो सब कुछ सही चल रहा था, वसुदेव बेचारे सब शांत थे, बस फिर से अग्नि लगा दी। और अब दोबारा से क्या किया कंस ने, पूरा पूरा प्लान बनाया कि कैसे कृष्ण और बलराम जी का वध किया जाए, उनको मथुरा बुलाया जाए। तो ये भी कार्य दिखने में कितना गलत कार्य, लेकिन अब फिर से इनका क्या था लाला जी का अभिप्राय कि बहुत हो गया, अब कंस का वध हो जाना चाहिए और कृष्ण को मथुरा में अपनी लीलाएं प्रकट करनी चाहिए। तो इस समय हम देखते हैं कि भगवान और भगवान के अवतारों के कार्य दिव्य हैं, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। हर एक वध जीव के हृदय में परमात्मा बैठे हैं और परमात्मा समय समय पर वध जीवों को निर्देश देते रहते हैं। अगर एक चोर भगवान के सामने आएगा और प्रार्थना करेगा कि भगवान बहुत दिन हो गए कुछ हाथ नहीं लगा, तो वही परमात्मा चोर के हृदय में बैठे हुए उसको निर्देश देंगे जाओ उस घर में, वहां तुम चोरी कर सकते हो, और भाग के जाएगा। और उसी घर वाले को फिर से वही उसके हृदय में बैठे परमात्मा उसको निर्देश देंगे सावधान चोर आ रहा है। तो कितने विरोधात्मक काम करते हैं, एक ही परमात्मा दूसरों के हृदय में बैठे अलग अलग उनको निर्देश दे रहे हैं। तो समझने में बिल्कुल समझ के बिल्कुल बाहर है, लेकिन भगवान और भगवान के अवतारों के विशेष अभिप्राय होते हैं। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए तो उनके आने के अंतरंग कारण भी थे और बाहरी कारण भी थे। बाहरी कारण ये था कि वे युग धर्म की स्थापना करना चाहते थे। बचपन में तो निमाई पंडित के रूप में बहुत बड़े तर्कवादी थे, बड़े बड़े तर्क शास्त्रियों को उन्होंने हरा दिया। तो अद्वैताचार्य सोच रहे थे अरे कहां गए थे, कैसे हो गए युग धर्म की स्थापना, किसके लिए बुलाया था इनको। लेकिन जब ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली तो चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह नाचने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। तब प्रकाशानंद सरस्वती जी ने देखा अपने 10 शिष्यों के साथ कि ये क्या हो गया इसको, ये तो इतना अच्छा वेदांत का ज्ञाता था, ये क्या पागलों की तरह नाच रहा है कीर्तन कर रहा है। तो समझ ही नहीं पाया इस बात को, उसको समझ में नहीं आया कि सन्यासी होकर पागलों की तरह क्यों नाच रहा है, क्योंकि वो समझ आते आम सन्यासी है और जानते नहीं थे स्वयं भगवान है और किस लिए आए, तो उनको समझ में नहीं आई ये बात। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब उनका अंतरंग कारण क्या था, अंतरंग कारण इसलिए था कि स्वयं कृष्ण राधा रानी के महाभाव का आस्वादन करना चाहते थे, तभी वो प्रभु महाप्रभु के रूप में आए, तभी राधा रानी के महाभाव का वो आस्वादन करना चाहते थे। तो अपनी अंतरंगा लीला में उन्होंने अंतरंग अपने कारण को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे अपने अंत लीला में, और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जी के साथ उन्होंने अपने महाभाव का पोषण किया। कहते थे स्वरूप दामोदर गीत गोविंद से और विल मंगल ठाकुर जी कृष्ण का नाम लिखते अच्छे अच्छे को गीत सुनाते थे, रामानंद राय अच्छे अच्छे को श्लोक सुनाते थे, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु की और भाव बढ़ते थे और उसका आस्वादन करते थे। तो ये अंतरंग लीलाएं हैं जो कि और किसी को मालूम नहीं होती थी, केवल चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पाषणों को ही मालूम होता था। इसी ढंग से जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो अपने संन्यास लेने का उन्हें अभिप्राय सबको नहीं बताया, बहुत ही गूढ़ रखा। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने पाषणों के साथ बैठे थे तो उनके मुख से ऐसे वाक्य निकले जो किसी को समझ नहीं आए, केवल नित्यानंद प्रभु समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने बताया कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं क्योंकि मैं जिस कारण से आया था लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों का उद्धार नहीं हो रहा, लोग मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, वो तो उनका बहुत ही पतन हो जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार राधा रानी के भाव में आए तो गोपी गोपी क्या के चिल्लाने लगे, तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने बोला अरे भाई गोपी गोपी क्यों चिल्ला रहे हो, गोपियों के नाम से आपका उद्धार नहीं होगा, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो जो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे उन्होंने बोला सोचा
कि ये विद्यार्थी मुझे कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, हो सकता है कृष्ण का संदेश वाहक हो। तो वो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु थे, तो उन्होंने कृष्ण को गालियां देनी शुरू करी। अरे वो कृष्ण वो तो लंपट है, धोखेबाज है, उसका नाम क्यों लूं मैं तो गोपी गोपी कहूंगा। तो उसे बोला नहीं गोपी नहीं, तुम कृष्ण कृष्ण कहो। तो ऐसा जब बातचीत चल रही थी तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया और उन्होंने एक डंडा लिया और उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। तो विद्यार्थी तो भाग गया, बाद में उसने सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, बोला कि महाप्रभु मुझे भाग मारने के लिए आए। तो सब ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु को मारने का प्रयास किया। तो इससे चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख हुआ कि ये लोग मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, ये मेरे प्रति अपराध ना कर पाए इसका एक ही तरीका है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि सन्यासी के प्रति कोई अपराध नहीं करेगा। तो ये बात उन्होंने केवल नित्यानंद प्रभु को बताई और नित्यानंद प्रभु ने सुना तो नित्यानंद प्रभु का हृदय द्रवित हो उठा कि सच्ची माता इसको कैसे सहन कर पाएगी। जब महाप्रभु संन्यास लेंगे तो उनके सुंदर सुंदर केश काट दिए जाएंगे, ये सोचते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। लेकिन ये गुहितम भाग थी, महाप्रभु ने केवल नित्यानंद प्रभु को ही बताई। इसलिए भगवान और भगवान के अवतारों का विशेष अभिप्राय होता है और इस विशेष अभिप्राय को करने के लिए वो कोई भी कार्य कर सकते हैं जो कि जन साधारण की बुद्धि से परे है। इसलिए श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को समझने का एक ही तरीका है कि हम समझ जाएं कि वो अचिंत्य है, बिल्कुल अचिंत्य है, हमारी समझ से परे है। भगवान राम तो आए, उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। लेकिन जो कृष्ण आए उनको क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम। अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं। भागवतम के दसवें स्कंध में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं जब रासलीला का वर्णन होता है कि भगवान तो आते हैं धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए, तो ये कौन सा धर्म है कि प्रायः स्त्रियों के साथ रास को नाच रहे हैं? ये कोई धर्म है? भगवान तो अपना उदाहरण स्थापित करना चाहिए, आदर्श उदाहरण स्थापित करना चाहिए, धर्म के नियमों की स्थापना करने आए हैं और प्रायः स्त्रियों के साथ रास को रासलीला कर रहे हैं, ये कैसा है भगवान है? तो क्या उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने? तेजी है सामना दोषो यथा ग्रहणो सर्वभूजो यथा, कि किसी भी तेजस्वी व्यक्ति में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अग्नि में सब कुछ डाल दिया जाए अग्नि उसको शुद्ध कर देती है लेकिन खुद बिल्कुल अशुद्ध नहीं होती। इसी तरह से भगवान के कार्य दिव्य है, दिखने में अनैतिक कार्य लग रहा है लेकिन ये शुद्धिकरण करने वाला है। और भगवान अपनी लीलाओं में जरा साफ साफ स्पष्ट कर देते हैं कि मैं धर्म के नियमों की स्थापना भी कर रहा हूं लेकिन जान जाओ कि मैं ही भगवान हूं, आप सब भगवान नहीं हो। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को एक ही बीमारी है, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कृष्ण हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं कृष्ण हूं। और कृष्ण स्वयं आके कहते हैं ठीक है करो कॉम्पिटिशन, अभी मालूम चल जाएगा कौन है असली कृष्ण। तो हम सब भगवान से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं। तो जो वास्तविक कृष्ण है वो आते हैं और दिखाते हैं, बन के दिखाओ कृष्ण, उठाओ गोवर्धन, चलो नहीं उठा पाएंगे, रासलीला करोगे, चलो आओ रासलीला करो, सारी की सारी खत्म। अक्सर लोग जब आर्गुमेंट करते हैं तो बोलते हैं जब भगवान ने रासलीला की तो हम भी कर सकते हैं, तो उनको उदाहरण दिया जाता है ठीक है भगवान ने गोवर्धन उठाया आप भी उठा लो। कह रहे ये कोई बात थोड़ी हुई है, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। वो कहते हैं देखो हमें हर एक के चरित्र से अच्छी बातें लेनी चाहिए, है ना? ठीक है उठा लिया भगवान ने गोवर्धन, गोवर्धन हम नहीं उठाएंगे, हमें भगवान की रासलीला अच्छी लगती तो वो करने दो, हमें उन्होंने गोवर्धन भी उठाया रासलीला भी करने दो, हम नहीं उठा सकते गोवर्धन मान लिया बात रासलीला तो करने दो। तो ठीक है आप खाली यही लीला उठा लो करो रासलीला, कितनी गोपियां थी भगवान के साथ, करोड़ों करो आप करोड़ों गोपियां, करोड़ों क्या किसी व्यक्ति की अगर दो दो भी उसके संबंध हो जाए तो बेचारे को आधा फाड़ दिया जाता है बीच में पागल हो जाता है, पाल नोच लेता है वो, कोई बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को देखा है रक्त के आंसू बहते हैं उनके, किसी का गलती से दो दो जगह संबंध स्थापित हो जाए। पत्नी को मेंटेन करना आज के कल में इतना मुश्किल है, और व्यक्ति के अगर ऐसे दो या तीन अफेयर हो जाए तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
भगवान की किसी भी ढंग से हम भगवान के साथ स्पर्धा नहीं कर सकते, कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। भगवान साफ साफ, भगवान के आने का अभिप्राय यही होता है कि धर्म के नियमों की स्थापना भी करनी है, और साफ साफ बता दिया जाए कि मैं भगवान हूं, तुम भगवान नहीं हो, नकल मत मारो, कंपटीशन मत करो, चुपचाप सरेंडर कर लो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चुपचाप सरेंडर कर देगा। अगर हम भगवान के कार्यों को अपने भौतिक इंद्रियों से समझने का प्रयास करेंगे तो हमेशा मोहित हो जाएंगे। जिस ढंग से जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत में उनको सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि बहुत ही रसिक भक्त है, कौन से दक्षिण भारत में कौन से रसिक भक्त मिलेंगे, रामानंद राय। तो महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर बैठे थे और तभी देखते हैं कि वहां पे रामानंद राय आते हैं पालकी में बैठ कर। तो पालकी से रामानंद राय उतरते हैं, गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और फिर देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के शरीर से कांति निकल रही है, हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। तो रामानंद राय उनको प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी सब जाते हैं, समझ गए कि यही रामानंद राय है। तो बोले आप रामानंद राय है। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत इच्छा हो रही है मैं उनको आलिंगन करूं, और रामानंद राय साफ साफ बता रहे हैं कि आप सन्यासी हैं, मैं तो एक शूद्र हूं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनका गाल आलिंगन कर देते हैं, और जैसे ही महाप्रभु रामानंद राय आपस में आलिंगन करते हैं दोनों के आंख नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित शुरू हो जाती है, शरीर में कंपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे राधा रानी के भाव में और रामानंद राय कौन थे, विशाखा। तो दोनों को दोनों आलिंगन कर रहे हैं और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, दोनों के दोनों कृष्ण कृष्ण बोलते हुए मूर्छित हो जाते हैं, बिल्कुल भाव के सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो रामानंद राय के साथ कई ब्राह्मण आए, कई संगीत संगीतज्ञ थे, तो वो सोच के देख के दृश्य कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे वो सोच रहे हैं ये सन्यासी जिसके शरीर से ब्रह्म जैसी कांति निकल रही थी, ये एक शूद्र का आलिंगन कर रहे हैं, इसको करना चाहिए, किसी सन्यासी को शूद्र का आलिंगन करना चाहिए। और दूसरे लोग सोच रहे हैं चलो ठीक है ये तो कर लिया, तो दूसरे इसको देखो रामानंद राय को, ये मद्रास के गवर्नर है, एक बड़े गंभीर व्यक्ति है, एक गंभीर व्यक्ति है, गवर्नर है, और ये कैसे इनको लक्षण आ रहे हैं, कैसे ये रो रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा, कर्मकांडी ब्राह्मणों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परमात्मा है, वो उनके मनोभाव को समझ ले। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने भाव के लक्षणों को रोका कि ये लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान की लीलाएं बहुत गूढ़ होती है, निगुण कार्य गूढ़ कार्य है, ये समझना हर एक के लिए संभव नहीं है। भगवान के गूढ़ कार्यों से भगवान के बड़े बड़े भक्त मोहित हो जाते हैं। कृष्ण किताब में भगवान के दशरथ कर्म में बहुत अच्छा वर्णन आता है एक लीला का, कि द्वारका में एक ब्राह्मण था जिसके जब भी संतान की उत्पत्ति होती थी वो संतान मर जाता है, एक एक करके उसके 9 संतानें मर गई, और हर बार जाके राजा उग्रसेन के दरबार में जाता था और बोलता था कैसे क्षत्रिय हो प्रजा का पालन नहीं कर पा रहे, ये कैसे संभव है कि पिता को होते हुए पुत्र की मृत्यु हो जाए, इसका मतलब आप क्षत्रिय नहीं हो, आप क्षत्र बंधु हो और आप ब्राह्मणों से द्वेष करते हो। तो उस सभा में कृष्ण भी होते थे, बलराम भी होते थे, प्रद्युम्न भी होते थे, अनुरोध भी होते थे, सबके सब गालियां सुन रहे थे। तो एक बार वहां पे अर्जुन थे और अर्जुन के सामने जब ऐसी गालियां दे रहे थे अर्जुन का खून खौल उठा। अर्जुन ने सोचा कैसे मेरे होते हुए क्षत्रिय को गाली दे रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला निश्चिंत रहो मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, मैं कृष्ण संकर्षण या अनुरूप प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन मैंने शिव को प्रसन्न किया हुआ है, शिव जी से मुझे एक अलग विशेष अस्त्र मिला हुआ है, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। तो अर्जुन भी कृष्ण को कह रहे हैं कैसे क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण के रक्षा नहीं कर सकते। अर्जुन भी भ्रमित हो गए। तो कृष्ण चुपचाप बैठे, ठीक है बोलो आ जाओ तुम जोश में। जब उसके 10वां पुत्र होने लगा तो ब्राह्मण ने बोला आ जाओ भी अब पुत्र होने लगा। अर्जुन तुरंत गांडी पुरुष लेके गए और रास्ते में किसका मंत्र का जप करते हुए गए, शिव जी का। कृष्ण से विश्वास उठ गया, बोले कृष्ण की क्या शरण लेनी, ये 9 बच्चों को तो बचा नहीं पाए तो अब जप से कहां बचा पाएंगे। अर्जुन जैसे भक्त शिव जी का मंत्र जप करते हुए जा रहे हैं कि शिव जी अब इनकी रक्षा करो, और वहां जाके तरह तरह के तीर छोड़ दिए, देखता हूं कौन आता है, और खड़े हो गए गांडव भीष्म के। दसवां संतान उत्पन्न हुई, बच्चा पुत्र था, थोड़ी देर के लिए रोने की आवाज आई, और उसके बाद देखते हैं गायब, बच्चा भी गायब हो गया, अर्जुन के छोड़े हुए तीर भी गायब हो गए। अब ब्राह्मण मार आया, अब उसे खूब गालियां निकाली अर्जुन को, अरे तुम नपुंसक हो, तुम अपने आप को क्षत्रिय बोलते हो, कहां कहां गए तुम्हारा वचन। अब अर्जुन को लगे तो बहुत गड़बड़ हो गई, अर्जुन के पास योगिक शक्तियां थी, कहते घबराओ मत, अभी लेके, अभी भी अहंकार था, अभी लेके आता हूं। अपनी योगिक शक्तियों से अर्जुन सारे ग्रहों में चले गए, ऊपर नीचे ब्रह्मलोक रसातल पाताल सब जगह देखा है, कहीं कुछ मिला नहीं, और ब्राह्मण का रोष बढ़ता जा रहा है। तो अर्जुन ने सोचा एक ही उपाय है कि मैं अग्नि में अपने आप को ध्वस्त कर लूं, और जब अर्जुन अपने आप को ध्वस्त करने लगे तब आए कृष्ण, ठहरा ऐसा मत कर, चलो मैं लेता हूं तुम्हें। और फिर कृष्ण ने अपना दिव्य रथ मंगाया और सब पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए, ब्रह्म ज्योति को चीरते हुए पहुंच गए बिरजा नदी तक सागर में, और वहां देखते हैं कि महाविष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, और वहां देखते हैं कि महाविष्णु के पास सारे के सारे 10 संतानें हैं। और महाकृष्ण पहुंचते हैं अर्जुन के साथ, तो कृष्ण महाविष्णु जी को प्रणाम करते हैं। तो कोई कहे कृष्ण सब कारणों के कारण है, तो महाविष्णु क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ अर्जुन आए थे और कृष्ण उदाहरण दिखा रहे हैं, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं, तो अर्जुन के साथ प्रणाम कर रहे हैं और सबके सब 10 बच्चों को लेकर वापिस आते हैं। ये सारी लीला रची थी महाविष्णु ने, क्योंकि महाविष्णु जी कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, तो वापिस लाकर उनको देते हैं। तो इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अगर महाविष्णु ने कृष्ण के दर्शन ही करने थे तो उनको बच्चे चुराने की क्या आवश्यकता थी। वो द्वारका में जब ब्राह्मण के घर बच्चे चुराने आए थे, उनका घर पास में था अर्जुन कृष्ण का, वहीं दर्शन कर लेते। तो उसकी वो टीका बताते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं था कि कृष्ण ने महाविष्णु जी को आज्ञा नहीं दी, ऐसे नहीं तुम मेरे दर्शन कर सकते, कोई आज्ञा नहीं थी दर्शन करने के लिए, तो इसलिए उन्हें बच्चे चुराए। तो दूसरा प्रश्न ये उठता था कि अगर कृष्ण ने उनको आज्ञा नहीं दी अपने दर्शन करने के लिए, तो फिर महाविष्णु गए ही क्यों, अपने किसी दूतों को भेज देते। तो उसमें बताते हैं इसलिए किसी दूत को नहीं भेज पाए क्योंकि कृष्ण के होते हुए किसी द्वारका वासी पे कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, तो महाविष्णु को स्वयं आना पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए, कोई और व्यक्ति द्वारका में किसी वासी को कष्ट दे ही नहीं सकता। तो महाविष्णु आते थे स्वयं को बच्चों को चुरा कर जाते थे। लगता है कि अगर महाविष्णु को कृष्ण ने आज्ञा नहीं दी अपने दर्शन करने के लिए, तो फिर स्वयं कृष्ण उनके पास क्यों गए दर्शन देने के लिए, पहले तो वो द्वारका में आज्ञा नहीं दे रहे और अब स्वयं उनके पास जा रहे हैं उनके लोक में। तो इसके उत्तर में बताते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो अर्जुन अपने आप को अग्नि में डाल देता है, तो भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान उसको ले गए। तो देखिए भगवान की लीला कितनी गूढ़ है, समझने से बिल्कुल बाहर है। तो इसलिए महाविष्णु के लोक में जाके अर्जुन को लगा कि जितना भी भौतिक जगत में ऐश्वर्य है सबके सब भगवान की शक्ति है, सबके सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो जिस तरह से भगवान के और भगवान के अवतारों का विशेष अभिप्राय है, उसी ढंग से हम सब भगवान के विभिन्न अंश हैं और हम विभिन्न अंशों का भी विशेष अभिप्राय है। भगवान एको बहु नाम से कहते हैं, वेदों में कथन आता है कि भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेकानेक जीवों में, इसका मुख्य कारण क्या है, भगवान अनेक जीवों में विस्तार क्यों करते हैं, भगवान चाहते हैं कि सारे के सारे जीव उनको आनंद दे, यानी कि हम सबका अस्तित्व केवल इसीलिए है कि हम भगवान को आनंद की प्राप्ति दे, आनंद दे। जिस तरह से भगवान के अवतारों का अभिप्राय है कि धर्म के नियमों की स्थापना करना, उसमें से हम जैसे जीवों का भी यही मुख्य उद्देश्य है कि हम धर्म, हम भगवान को आनंद दें, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे जीवन का हर एक एक कार्य भगवान के आनंद के लिए होना चाहिए, हमें भगवान से कंपटीशन नहीं करना। अगर हम भगवान से विमुख होकर आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो वी आर चैलेंजिंग कृष्णा, हम कृष्ण के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि आओ कृष्ण देखते हैं कौन जीतता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो जन्मों जन्म हम हारते ही रह जाएंगे। तो केवल एक ही हमारे पास उद्देश्य है कि हम कृष्ण को शरणागति भेजें। तो श्रील प्रभुपाद,
श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शक्तिशेष अवतार है। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसे गुण कार्य किए जो समझ नहीं सकता कोई। 70 वर्ष की आयु में ही क्यों? कोई पूछता है कि श्रील प्रभुपाद भगवान के शक्तिशेष अवतार है, 1922 में उनको उनके गुरु के आदेश मिले कि जाओ विदेश में प्रचार करो, और 1966 में जाकर प्रचार किया 44 साल, और बूढ़े होकर क्यों प्रचार किया? तो ये भी भगवान का विशेष प्रबंध है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। अगर वो युवा अवस्था में प्रचार कर देते, श्री प्रभुपाद को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो हम उनकी महिमा का कैसे गुणगान करते हैं? तो भगवान हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे उनके शिष्य बड़े भ्रमित हो जाते थे। जब बॉम्बे में वो राजा राजधानी का मंदिर बना रहे थे, अपने विदेशी शिष्यों को भेजा जाओ बनाओ मंदिर, तो वहां पे पूरा जंगल था जुहू में, तो बड़े बड़े विदेशी जो उनके शिष्य थे वो अंदर अंदर सोचते थे इस बूढ़े सन्यासी को क्या हो गया, और कोई जगह नहीं मिली थी, प्रभुपाद जी का वर्णन आता है, और कोई जगह नहीं मिली थी, बड़े बड़े चूहे यहाँ पे, सांप, जंगल, ना रहने की जगह, ना टॉयलेट, ना बाथरूम, टेंट लगा के रहना पड़ रहा है। बॉम्बे इतना बड़ा है, उस समय बिल्कुल उसमें आबादी नहीं थी जुहू में, तो समझ नहीं पा रहे थे प्रभुपाद क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक विजन था, एक दृष्टिकोण था। इवन अमेरिका जाने से पहले ही प्रभुपाद जब बॉम्बे के उस हिस्से से गुजरते थे सुमति मुरारी से मिलने के लिए, तो अंदर अंदर प्रार्थना करते थे कि हे भगवान मैं आपके लिए यहां मंदिर बनाना चाहता हूं। अब ये बात केवल कृष्ण जानते थे और राधा रास बिहारी जानते थे, और कोई नहीं जानता, गूढ़ विषय। तो प्रभुपाद जी के शिष्य को समझ नहीं आ रहा कि यही जगह मिली थी पूरे बॉम्बे में, जंगल, और आज देखो उस जुहू के मंदिर की क्या स्थिति है। इसी ढंग से जब 1969 में ये अभियान चला, टीवी में दिखाया गया कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चांद पे विजय पा लिया, चांद पे चले गए, सब टीवी पे दिखा रहे थे, तो श्री प्रभुपाद ने तुरंत बोला ये सब झूठ है, हो ही नहीं सकता, व्यक्ति चांद पे जा ही नहीं सकता इस शरीर से। प्रभुपाद जी के कई शिष्य को छोड़ के चले गए, बोले आप जानते नहीं हो वैज्ञानिक कितनी तरक्की कर दी है, आप भारत के सन्यासी बूढ़े, आपको पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी कर सकती है। प्रभुपाद जी को शास्त्रों पर दृढ़ विश्वास था, बोले नहीं मनुष्य चांद पे नहीं जा सकता इस तरीके से। कुछ लोग शिष्य छोड़ के चले गए, नहीं आज वो साबित हो रहा है कि व्यक्ति चांद पे नहीं गया। तो प्रभुपाद जी के कार्य भी दिव्य थे जो कि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। यार कितने कृष्ण प्रेम करे होते तार वाक्य क्रिया मुद्रा दिव्य न हो जाए, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है उसके वाणी, उसके कार्य, उसकी मुद्राएं समझ में नहीं आती, केवल कृष्ण के भक्ति इसको समझ पाते हैं। इस ढंग से भगवान ने जो सृष्टि की है इसके पीछे बहुत गूढ़ कारण है। सृष्टि के पीछे क्या गूढ़ कारण है? इसके पीछे गूढ़ कारण यह है कि हम लोग अपना शुद्धिकरण कर सके, ये हमें मौका मिल रहा है पद जीवों को कि बद जीव अपना शुद्धिकरण कर सके। शुद्धिकरण करने का अर्थ है कि हम अपनी भोक्ता की प्रवृत्ति को समाप्त करें, हम सेवक बने। जैसे कि यहां बताया जा रहा है उपगुप्त वित्ता, राजा पृथु के जो वित्त थे, धन था, बड़ा उपगुप्त था, और यहां से प्रभुपाद तात्पर्य में रखा है कि हर व्यक्ति को अपना धन गुप्त रखना चाहिए गुप्त। बताइए धन गुप्त रखना चाहिए अपने किसके लिए? गुप्त रख के क्या करेंगे? अच्छे कार्य करेंगे। गुप्त रखना चाहिए भौतिकवादी व्यक्तियों से, अपने लालची रिश्तेदारों से, उनसे गुप्त रखना चाहिए, और गुरु और भक्तों के आगे बिल्कुल खोल के साफ चिट्टा रख देना चाहिए। ये नहीं अब भक्तों से और गुरु से भी छिपा कर लिखा हुआ था कि गुप्त रखना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा सा देते रहे, ठीक है दान दे, प्रभु जी बहुत दे दिया। गुरु के सामने बिल्कुल चिट्टा साफ करके रखना चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो जो कुछ धन कमाते थे चुपचाप प्रभुपाद जी के चरणों में रखते थे, और प्रभुपाद बोलते थे ठीक है इसमें से इतना तो अपने घर के लिए ले लो। ये एक शिष्य का कर्तव्य है, ये शिष्य का कर्तव्य है। अरे धन किससे छुपाएंगे ये बताइए, किससे छुपा सकते हैं धन? परमात्मा तो वो है जो एक काली चट्टान पे काली चींटी को काली रात में भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं चट्टान हो, काली रात हो, उसे काली चींटी चढ़ रही हो, देख सकते हैं हम, लेकिन परमात्मा देख सकते हैं। इसी ढंग से सरकार से छुपाए हुए काले धन को कोई नहीं देख सकता, लेकिन भगवान देख सकते हैं कहां काला धन छुपा के रखा है। तो इस सारे के सारे काला धन जो भी हो या सफेद हो या काला, धन केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही है। कृष्ण षट ऐश्वर्य पूर्ण है। अक्सर लोग बोलते हैं कृष्ण सबसे अधिक धनी। अरे सबसे अधिक धनी नहीं, केवल धन कृष्ण के पास ही है। अगर हम ऐसे बोले कि सबसे अधिक धनी है कृष्ण, इसका मतलब कृष्ण के अलावा और भी धनी व्यक्ति है, तो कृष्ण के अलावा कोई धनी हो कैसे सकता है? किसी का भी नहीं है धन, तो धन तो केवल कृष्ण का है। ये तो कृष्ण की कृपा है, कुछ समय के लिए धन हमारे पास है बस, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाना ही लगाना है। नहीं लगाएंगे तो सर्वनाश। छुपा के रखेंगे, अगर हम धन छुपा के रखते हैं तो क्या होता है, इनकम टैक्स वाले कभी भी रेड कर सकते हैं। तो अगर हम कृष्ण से धन छुपा के रखेंगे, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो कृष्ण भी क्या करेंगे, मृत्यु सर्वरस चाह, मृत्यु के समय रेड मारेंगे, सारा का सारा धन छीन लिया जाएगा। या तो दे दो चुपचाप या फिर छीन लिया जाए। तो सीधा अर्थ है चुपचाप दे दिया जाए। अक्सर जब रेड पड़ने वाली होती है तो कई बार इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, फोन आ जाता है रेड होने वाली है छुपा लो। कृष्ण भी रेड मारने वाले हैं, कृष्ण के भक्त इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कृष्ण मृत्यु के रूप में कभी भी आ सकते हैं, रेट पड़ने वाली है, मृत्यु के समय कभी भी आ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको है, बताइए प्लानिंग कर सकते हैं कुछ कि रेट को अवॉइड कर लें? नहीं, मृत्यु के रूप में कृष्ण कभी भी रेट लगा सकते हैं। इससे अच्छा है कि तुरंत अपने आप को समर्पण कर दें और क्रेडिट पा लें बस। इसलिए ये धन जो है केवल कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे खोला बेचा श्रीधर, जो कि केले के पत्ते बेचा करते थे। उनकी कमाई मेरे ख्याल से दो आना होती थी या दो पैसे होते थे या, तो उसमें से भी आधी कमाई वो गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। वो नहीं कहेंगे अरे भैया दो पैसे कमाइए कुछ तो खाने दो, आधी कमाई गंगा जी की सेवा में लगाते थे। फटी हुई धोती डालते थे जिसमें कई छिद्र होते थे, या 20-22 छिद्र होते थे और छत में छिद्र होते थे, पानी टपकता रहता था। पूरी रात केवल कीर्तन करते रहते थे आनंद में से। लेकिन उनके इसी भक्ति को देखकर महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने अपना त्रिभंग रूप उनको दिखाया। तो यह है असली धन का फायदा। गोलोक का प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन है, हमारा असली धन है राधा कृष्ण का प्रेम। यही उत्तर रामानंद राय ने दिया चैतन्य महाप्रभु को, सबसे बड़ा धन है राधा कृष्ण का प्रेम। हम धन किस लिए चाहते हैं ये बताइए, धन के क्या उपयोग है? और दो उद्देश्य होते हैं, पहला हमें सुख दे दे, दूसरा सुरक्षा। संकट के समय हमें काम आएगा, दूसरा सुरक्षा। अब आप देख लीजिए जो ये धन हमारे पास है सुख देता है हमें, सुख नहीं दुख का ही कारण है। इस धन के कारण हमारे कितने शत्रु हो जाते हैं, गलत गलत हमारे आदतें पड़ जाती हैं। और दूसरा क्या है, सुरक्षा, जिसके पास जितना धन वो उतना ज्यादा असुरक्षित। लेकिन गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, अगर ये हरि नाम का धन हमारे पास है तो ये हमें सुख भी देगा और सुरक्षा भी देगा, और बड़े से बड़े संकट में मृत्यु के समय हमारी रक्षा करेगा। वो धन हम बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी करवा लें डॉक्टर बोलेगा क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे मुझे झुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस धन को हमने गुप्त रखना है लालची रिश्तेदारों से। भागवतम के पांचवे स्कंध में बताया गया है, कल तुलना की गई है रिश्तेदारों से और धर्म, जो पत्नी जो कि धर्म के रास्ते पे नहीं चल रही, चूसने वाले जो आप धन कमा के लाओगे खून चूस लेंगे, सारा का सारा धन लाओ यहाँ पे। प्लंडरर्स धोखेबाज और गुंडों की तुलना की गई रिश्तेदारों से कि सबका सब लूट लेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो आपको मौका दे रहे हैं कि उस धन को आप कृष्ण की सेवा में लगाओ, अपना शुद्धिकरण करो। जिस तरह से एक छोटे बच्चे के हाथ में 500 का नोट आ जाए और नोट लेके वो खेल रहा है, उसको पता नहीं कि क्या वैल्यू है, तो पिताजी उसको किसी न किसी बहला के फौसला के उससे नोट ले लेंगे, फिर उसका सही उपयोग करेंगे। इसी ढंग से भगवान के जो भक्त हैं वो देखते हैं बाहर भौतिकवादी लोगों के पास धन है, उल्टा सीधा प्रयोग करेंगे। तो भक्त लोग जाते हैं बहला के फौसला के, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं वो हैं, लाइए धन ला। और उनसे वापस ले लेते हैं। तो भगवान के भक्तों का धन्यवाद करना चाहिए जो इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, अन्यथा वही धन हमारे पतन का कारण बन रहा है। तो इसलिए हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम अपना शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण का अर्थ है कि हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाए। शास्त्र में बताया गया है कि 50% धन हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए कम से कम। लेकिन समझ लो किसी की आय महीने की एक आय 2 लाख रुपए है, 50% हो गया 1 लाख, तो बाकी का 1 लाख से वो खाना पीना थोड़ी करेगा, उसके खाने पीने के लिए 10-20-30 हजार ही काफी है मैक्सिमम। तो उसको जितना धन बचता है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान उपन कथा ईश्वर बता रहे हैं, ईशावच्य एकदम सर्वम यद किंचित जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मां गृदा तस्य सिद्धवतम। भगवान सबके मालिक हैं चर और अचर, और हर एक व्यक्ति के भोगने के लिए एक अलग कोटा दिया हुआ है। उस कोटे से ज्यादा अगर तुम भोगोगे तो तुम चोरी कर रहे हो और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो साधा जीवन ऊंचे विचार होने चाहिए, कितना ही बड़ा व्यवसाय क्यों ना चल रहा हो हमें अपना जीवन साधा रखना चाहिए, और उस व्यवसाय से जो धन मिले सारा का सारा कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अन्यथा ये शुद्धिकरण नहीं होगा दूषीकरण होगा। कृष्ण ही जानते हैं कि हमारे पास कितना बचा हुआ धन है। कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने क्या दिया, कृष्ण ये देखते हैं कि आपने कितना बचाया। कहां से बच सकते हैं? इनकम टैक्स से बच सकते हैं। परमात्मा जो हृदय के अंदर बैठे हैं उससे कहां बचेंगे? सुपर ब्लैक मनी होगा जो, तो सुपर ब्लैक ब्लैक योनियों में जाना पड़ेगा, फिर हमें अंधकार में योनियों में जाना पड़ेगा। से बचने का एक ही तरीका है कि चुपचाप हम भगवान की सेवा में लगाए, अंत मृत्यु के समय रेड पड़ेगी सारा का धन छीन लिया जाएगा। तो आज के श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान और भगवान के अवतारों के विशेष अभिप्राय होते हैं, उनके कार्य बहुत गुण होते हैं, उसी तरह से भगवान के भक्तों के कार्य बहुत गुण होते हैं, और हम सब भगवान के विभिन्न अंश हैं। हमारा भी यह अभिप्राय है कि हम अपने जीवन को शुद्ध करें और अपने हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान की भोग्य वस्तु हैं, हमें भगवान से कंपटीशन नहीं करना, भगवान के द्वारा हमें भोगा जाना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है टिप्पणी है? आत्मा हमारे हृदय में है, उसको हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। जब भी हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे हृदय से आवाज आती है मत करो, परमात्मा हमें बार बार रोकते हैं, फिर भी हम उसकी आवाज को इग्नोर कर देते हैं। आत्मा रोज सुबह जब हम उठते हैं किसी कृपा से उठते हैं, परमात्मा की कृपा से उठते हैं। हम उठते हैं तो कुछ समय के लिए भूले होते हैं मैं कहाँ हूँ, तब याद आता है सुबह का समय है फैक्ट्री जाना है, होता नहीं होता। जब हमारा अगला जन्म होता है वो भी सो के उठने के समान है, पिछले जन्म में हमारी क्या इच्छाएं थी ये फिर परमात्मा अगले जन्म बताते हैं कि किस तरह से उसको पूरी करनी है। हमारे उदर में अग्नि के समान है, अग्नि है वैश्वान अग्नि जो भी खाने को पचाते हैं, परमात्मा का वो हर पल हमारी मदद कर रहे हैं, हर क्षण मदद कर रहे हैं।
जो आजकल पंडित जी आई जी हो गए और वो राधा का उनको मतलब ये तो नहीं कह सकता कि बेवकूफ है या बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अगर उसमें अगर ऐसा कर रहा है भाई
कहने की आवश्यकता है कि आपने खुद ही कह दिया बेवकूफ खुद ही बन रहे हैं दूसरों को भी बना रहे हैं। बचना चाहिए सहिज्ञा से बचना चाहिए, बहुत ही चीप, इतना चीप थोड़ी है। कृष्ण प्रेम जब किसी का प्रवेश करेगा तो हमें यही वो कह रहे हैं हड्डियां टूट जाएंगी हमारी, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कृष्ण प्रेम को डाइजेस्ट कर सके। कृष्ण प्रेम राधा जी का भाव आ गया तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बन जाते थे जैसे सीताफल की सब्जी की तरह, सारे के सारे संकुचित हो जाते थे, कभी दीवार के छोटे छेद में से निकल जाते थे, अपने आप को दबा के रगड़ते थे, पागल हो जाते थे। राधा रानी का भाव इतना सस्ता है क्या कि लहंगा चोली डाल के नाचने लगे राधा रानी का भाव? ये हो ही नहीं सकता, सस्ता है प्रेम, कृष्ण प्रेम इतना सस्ता है। साधारण दुनिया में जो प्रेम एक काम है एक इस पुरुष को इस चीज से होता है तो वो लड़का उछलना शुरू कर देता है,
उसके पांव जमीन करने लगते हैं, तरह तरह गाने गाएगा, लौटता है इधर उधर करता है, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। तो जब कृष्ण सर्वोत्तम पुरुष कृष्ण का प्रेम जब अंदर प्रवेश करेगा तो क्या हालत होगी बताओ। थोड़ी सी कल्पना करो, सीमित बुद्धि हमारे हम भौतिक उदाहरण ही दे सकते हैं। जिस भौतिक चीज से किसी से प्रेम हो जाता है तो पागल हो जाता है व्यक्ति, लौटना शुरू कर देता है ना, उल्टे शेर गाने गाएगा, लौटेगा, वृक्ष के आगे पीछे भागेगा, कुछ भी करेगा। जब कृष्ण प्रेम अंदर घुसेगा तो भाई क्या हो जाएगा, सस्ती चीज नहीं
है।
हाँ सही बात है, देखो सही बात है, अंतरंग लीला होती थी, केवल अंतरंग पार्षदों के सामने दिखाते हैं, तभी गंभीरा में चुपचाप अंतर लीला में थोड़ी गंध। प्रभुपाद जी को कई बार भाव आते थे, प्रभुपाद अपने आपको रोक लेते, षट गोस्वामियों को भाव आते थे, षट गोस्वामी उनको रोक लेते, और हम लोगों को भाव नहीं और हम दिखाते हैं गलत मेकअप करने की अच्छी बात है, विभाव आने वाले पहले मेकअप कर लो। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की पिता गौर प्रेमानंद देव।